उपस्थित सुधीजनों देवियों, आज के इस पवित्र अवसर पर सबसे पहले उन लोगों को प्रणाम करते हैं जिनके बलिदान से, त्याग से, समर्पण से भारत देश को आज़ादी मिली। वो लोग जो आज तक लाखों करोड़ों लोग जिनको कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला है, जो गांव में, जंगलों में, छोटे शहरों में अपने अपने स्तर पर अपने जीवन में बलिदान देकर इस देश को आज़ाद दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई, हम उन सभी बलिदानियों को प्रणाम करते हैं। हम उन सभी महान आत्माओं को प्रणाम करते हैं जो इस देश की आज़ादी के बाद इसको एक सही दिशा दिया, इसके लिए जो संविधान बनाया कि भारत को एक लोकतंत्र देश के रूप में स्थापित करना है। जिस दिन को आज हम मना रहे हैं, 1950 जनवरी 26 को, हमारा देश पूरी तरह एक लोकतंत्र पर आधारित, डेमोक्रेसी पर आधारित, एक जनताओं का शासन से संचालित एक सार्वभौम, एक सुवरेन स्टेट के रूप में सामने आया। 1950 जनवरी 26 से पहले देश आज़ाद तो हुआ था, पर तब भी देश की जो 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 मुखिया थी वो ब्रिटेन की रानी थी। इसीलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आज़ाद से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जनवरी 26, कि इस दिन सचमुच भारत के लोग अपने देश की सत्ता अपने हाथ में लिए। तो उन सभी महात्माओं को हम नमन करते हैं जिनके कारण से ये देश आज़ाद हुआ, जिनके कारण से ये देश इतना इतना लोकतंत्र से भरा हरा भरा रहा। यद्यपि जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में करीब करीब 75% लोग निरक्षर थे। निरक्षर का मतलब इलिटरेट थे, जो अपना दस्तखत भी, जो सिग्नेचर भी करना नहीं जानते थे। इसके बावजूद भी ये देश लोकतंत्र में बना रहा, डेमोक्रेसी इसमें बनी रही। ये जो अचीवमेंट है, ये बड़ी छोटी छोटी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि जो भारतवासी हैं, जो आपको, क्यों आपको भारत पर गर्व करना चाहिए, आप अपने पड़ोसियों को देखकर समझ सकते हैं। उसी आजादी के दिन के बाद तीन तीन देश आजाद हुए, भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, बाद में पाकिस्तान दो टुकड़े, पाकिस्तान और बांग्लादेश हुआ, उसी के बगल में नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, उसी के बगल में चाइना है, इतना बड़ा देश है। इन सब देशों को जब आप अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने देश को कंपेयर करते हैं, तो आपको ये मौका मिलता है अपने ऊपर गर्व करने के लिए कि आप एक शुद्ध लोकतंत्र के देश के नागरिक हैं, एक प्योर डेमोक्रेटिक नेशन के आप नागरिक हैं, जिस देश में करोड़ों अरब लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जो भूखे रहते हैं, गरीब हैं, उसके बावजूद भी डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करते हैं, अपने दिल से एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए देश महान है। दुनिया में बहुत सारे देश आजाद होते हैं, आजादी के जश्न मनाते हैं। अफगानिस्तान में भी आजादी है, इराक में भी आजादी है, पर उनकी आजादी के जश्न के पीछे उन लोगों की कोई भविष्य नहीं है, कोई कोई उगता हुआ सूरज कहीं नहीं दिखता। इसीलिए आप भाग्यवान हैं कि आप ऐसे देश से जुड़े हुए हैं। हो सकता है आप उस देश में नहीं रहते हो, पर उस देश के साथ जुड़े हुए हैं। जो देश सिर्फ 60 साल हुआ आजाद हुआ, इस 60 साल की आजादी में जो दुनिया में अपना नाम बना सका है, उनके लोगों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा, जो आप लोग उस देश के मैसेंजर बन के, संदेश वाहक बन के, एम्बेसडर बन के पूरे दुनिया में उस देश के नाम की रोशनी करते हैं। सज्जनों, देवियों, माताओं, आजादी एक ऐसी फीलिंग है, ऐसा मोशन है, जो संसार में जो भी सिर्फ पत्थर और ईंट को छोड़ देने के बाद जिसमें भी थोड़ी बहुत चेतना है, कॉन्शसनेस है, हर किसी को पसंद है। सिर्फ पसंद नहीं, जो सबसे पहली जरूरी चीज है हर प्राणी के लिए, हर उस एनिमेट चीज के लिए जिसके अंदर एक आत्मा है, चेतना है, वो है उसकी आजादी, उसकी फ्रीडम। वो छोटी सी चिड़िया हो, चींटी हो, उसको भी अगर आप बांध के रखते हैं, घेरे में रखते हैं, उसके जीवन का सबसे पहला जो गोल होता है कि उससे उसके छुटकारा पाना। ये जो स्वराज शब्द है, स्वराज्य जिसको हम कहते हैं, सेल्फ रूल, खुद पर आजाद, खुद पर राज करना, ये अपने आप में बड़ा एक स्पिरिचुअलिज्म है, ये अपने आप में एक आध्यात्मिकता है। जिस व्यक्ति की आत्मा जागती है वही खुद को भी आजाद करता है और उस अपने देश के लिए, समाज के लिए भी आजादी चाहता है। जब हमारी आत्मा मरी हुई होती है तो हम गुलामी पसंद करते हैं, हम खुद को अपने मन के गुलाम कर देते हैं, अपने समाज को दूसरे के अंदर रहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। जब आत्मा मरी जाती है तब हम गुलामी में मजा लेने लगते हैं, और जिसकी आत्मा जिंदा होती है, मतलब जिसकी आत्मा का एहसास होता है, वो हर सुख में भी उसको ये दुखता है, ये चुभता है कि मैं गुलाम हूं। ये स्वाभिमान बहुत बड़ी जरूरी चीज है। ये जो सेल्फ एस्टीम का जो फीलिंग है, ये जो आत्म सम्मान का जो बोध है, वो बहुत जरूरी है इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए। और जिस आदमी के अंदर वो स्वाभिमान नहीं है, वो देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति, खुद के प्रति, तो वो उसके पास सब कुछ होने पर भी वो एक मरे हुए आत्मा की तरह व्यक्ति होता है। और इसीलिए हमें गर्व करना है कि हम ऐसे एक देश के व्यक्ति हैं जिस देश में गरीबी बहुत है, जिस देश में अनपढ़पन बहुत है, जिस देश में सैकड़ों समस्याएं जिसको आप गिना सकते हैं एक दो करके, रोज आप गिनाते हैं, खास करके भारत से बाहर आने पर तो हम रोज गिनाते हैं कितनी गंदगी है, कितनी बुराइयां है। वो हजारों बुराइयों के बावजूद भी जब आप अच्छाइयां गिनने लगेंगे, जो दो चार अच्छाइयां मिलेंगे दुनिया में, बहुत कम लोगों को वो अच्छाइयां मिलती है। वो एक लोकतंत्र का देश जहां हर चीज का फ्रीडम हो, आप गाली देने को आप फ्री हैं, जिस सरकार को चुनते हैं उस सरकार के खिलाफ गाली देने को आप फ्री हैं, जिस धर्म को आप मानते हैं उस धर्म के खिलाफ बोलने को आप आजादी हैं। दुनिया में बहुत कम देशों में ऐसा मौका मिलता है। स्वाभाविक रूप से जो अमेरिका में रहते हैं उनको ये स्वभाव जरूर मिलता है, ये 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 सौभाग्य जरूर मिलता है। पर हर देश अमेरिका, भारत या यूरोप नहीं होता। इस प्लैनेट में, इस धरती पर ऐसे करोड़ों अरबों लोग हैं जो देश में रहते हैं पर किसी तरह की आजादी उनको नहीं है, किसी तरह का छुटकारा नहीं है। तो ये जो लोकतंत्र है, कि लोगों का तंत्र है, वो कितना सफल है विफल है, ये इंटेलेक्चुअल लेवल में डिस्कशन का विषय हो सकता है। पर लोकतंत्र ये है और उसका उसका फायदा हमें दिखा 60-65 साल के अंदर भारत में जो तरक्की हुई, जो उन्नति हुई, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। वो सारे बुराइयों के बावजूद वो बुराइयां धीरे धीरे दूर होने के लिए कगार पर है। सज्जनों, देवियों, जब देश गुलाम था तो करोड़ों लोगों ने अपने शरीर, अपना मन, अपना धन, अपने पढ़ाई, अपना कैरियर, अपना गोल, अपना परिवार को त्याग दिया, बलिदान दिया उस देश को आजाद करने के लिए। नेताजी सुभाष बोस तो ये आह्वान दिया करते थे कि मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये जो राष्ट्रभक्ति है और जिसके कारण करोड़ों लोगों ने ये दिया, खून से लेकर के, धन से लेकर संतान तक। और ये नहीं कि सिर्फ 1947 के आसपास आजादी की लड़ाई चली, वो जो 200-400 साल से जो आजादी है, उस आजादी की के बाद जो देश बना, ऐसा नहीं है कि हमें आज भी देश की आजादी के लिए खून की जरूरत है। देश आजाद होने के बाद जो आजाद देश के लोग हैं उनके लिए जरूरी होता है कि उस आजादी को बचा के रखना बड़ी जरूरी होता है। इसको आप गीता में पढ़ते हैं, योग क्षेमम वहाम्यहम, जो मेरे पास नहीं है उसको पाने के लिए जो कोशिश है उसे हम योग कहते हैं, जो मेरे पास है उसको बचा के रखने का नाम क्षेम है। ये दोनों इंटर रिलेटेड है। अगर आप एक को छोड़ देते हैं, आप कमाए हुए चीज को कैसे बचाया जाए उस पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ कमाने में ध्यान देते हैं, तो फिर हम बड़े बेवकूफ होते हैं। हम कमाते जाते हैं पर घर में एक भी डॉलर नहीं मिलता, क्योंकि बचा नहीं पाते। देश को आजाद कर दिया पर उसके बाद अगर हम देश की बनी बनाई आजादी को सुरक्षित नहीं रख पाते, प्रिजर्व नहीं कर पाते, तो फिर हम एक बेवकूफ जनता के रूप में जाने जाएंगे। तो अब ये जरूरी नहीं है, जैसे कुछ लोग हमेशा चिल्लाते रहते हैं कि खून चाहिए, हमें देश को बचाना है, देश खतरे में पड़ गया। अब आपकी किसी की खून की जरूरत नहीं किसी देश को बचाने के लिए, अब जरूरत है कि हम अपने अपना जो जो मानसिकता है, जो स्टेट ऑफ माइंड है, उसको प्रिजर्व करें, उसको ठीक करें, जिससे कि देश ठीक बना रहे। देशभक्ति का ज्यादातर जो जो देश प्रेम या देश भक्ति को जिस तरह हम इंटरप्रेट करते हैं ये मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में, कि हम 10-20 पाकिस्तान को गालियां दे दें और क्रिकेट मैच जरूर देखें और खास करके भारत पाकिस्तान का मैच हो, ये खास तरह के इंडियन लोगों में आजकल की पेट्रोटिज्म की जो परिभाषा है, अगर पाकिस्तान की तरफ से आपने तारीफ कर दी तो भी आप देशद्रोही हो गए। आप कितना बेईमान है वो मतलब नहीं रखता, आप ऑफिस में काम करते नहीं करते वो मायने नहीं रखता, बस आप अगर 4-5 पाकिस्तान की गालियां दे दी और हिंदुस्तान की जय जयकार कर दिया, अरे ऐसे कभी कभी आजादी के दिन ऐसे 3 रंगे वाले पट्टे डाल दिया, झंडा फहरा दिया, तो आप बड़े पेट्रोटिक बन जाते हैं। सच कहिए ये हिपोक्रेसी टाइप का, ये एक तरह की हिपोक्रेसी है, इससे किसी देश को कोई भला नहीं होता, ना कभी हुआ है। अगर सचमुच जो देश के लोग हैं जो बाहर हैं या अंदर हैं, वो अपने देश को अच्छा देखना चाहते हैं, अपनी देश की आजादी को बनाए रखना चाहते हैं, तो जो देशभक्ति की जो देशभक्ति की जो जो रास्ता है, जो वे है, जो केनल है, उसको दूसरे तरह की सोचना चाहिए। व्यक्ति जब तक स्वधर्म में, स्वधर्म का मतलब होता है मेरा जो धर्म है, जो मेरी ड्यूटी है, जो मेरा प्रोफेशन है, जो मेरी ड्यूटी है, मैं अपने घर में मेरी जो ड्यूटी है, बाजार में जो मेरी ड्यूटी है, ऑफिस में जो मेरी ड्यूटी है, मैं अगर सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी को भी ठीक से निभा लूं तो भी मैं एक बहुत बड़ा देश प्रेमी बन सकता हूं। देश प्रेमी बनने के लिए देश भारत माता की जय, अमेरिका की जय बोलने की जरूरत नहीं है। मैं अगर अपने ऑफिस में ईमानदार हूं, मैं अपने बच्चे पालने में ईमानदार हूं, तो भी मैं बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त हूं, क्योंकि देश कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है सिर्फ। अगर जमीन का टुकड़ा ही देश होता तो भारत भी जो जिस जैसे जमीन का टुकड़ा है, ब्रिटेन भी वैसे जमीन का टुकड़ा है, अफ्रीका भी वैसे ही है, पाकिस्तान भी है, अमेरिका भी है, मेक्सिको भी है, सब जमीन के टुकड़े ही हैं। तो मेरा देश और आपके देश में फर्क क्या है? क्यों मैं अपने देश के लिए गर्व करूं उसके लिए ना करूं? एक कहानी एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने किसी डिसीजन के बारे में दिया था, ये देशभक्ति को थोड़ा डिफाइन करने के लिए। बोले जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो ब्रिटेन में एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर अपने लाइब्रेरी अपने कमरे में बैठ करके पढ़ाई लिखाई में लगे हुए थे, तो एक आर्मी ऑफिसर वो यूनिवर्सिटी में गया था विजिट करने, तो उसने देखा पूरा ब्रिटेन देशभक्ति की बुखार में डूबा हुआ है, हर आदमी लड़ाई में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो मैदान में नहीं है वो यहां बैठ के जो लिखने वाले अखबारों में लिखते हैं, किसी ना किसी रूप में पूरा ब्रिटेन के अंदर एक पेट्रियोटिज्म का बुखार चढ़ा हुआ है, क्योंकि लड़ाई के समय देशभक्ति के भाव ज्यादा आता है। पर ये प्रोफेसर बड़ा शांत होकर के चुपचाप अपने ऑफिस में बैठ के किताबें पढ़ रहा है या कुछ लिख रहा है, तो उसको बड़ा गुस्सा आया आर्मी ऑफिसर को, तो उसके रूम में गया, बोला आप कैसे ब्रिटिश हो, आपको शर्म नहीं आता है? देश लड़ाई में झुका हुआ है, पूरे देश के लोग लड़ाई में डूबे हुए हैं, और आप आराम से बैठ के पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। प्रोफेसर मुस्कुराकर बोले, बोले तुम किसके लिए लड़ रहे हो? बोले ब्रिटेन के लिए लड़ रहा हूं। बोले ये ब्रिटेन क्या चीज है? जमीन का टुकड़ा है, तो अगर जमीन का टुकड़ा है तो जर्मनी में क्या बुराई? वो भी तो जमीन का टुकड़ा है, फ्रांस भी जमीन का टुकड़ा है। नहीं, सिर्फ जमीन की टुकड़ा नहीं है, इस ब्रिटेन का मतलब होता है ये ब्रिटिश ब्रिटेन जिस जमीन पर है, उस जमीन के रहने वाले लोग, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनके तहजीब, उनका जो एक पूरा फ्रेमवर्क है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसका नाम ब्रिटिश है, ब्रिटेन है ना, वही ब्रिटिश कल्चर है, वही ब्रिटिश सोसाइटी है, जिस पर ब्रिटेन गर्व करता है, उस जमीन के टुकड़े पर नहीं। तुम उसी के लिए लड़ाई करते हो, तुम जिसको बचाने के लिए लड़ाई करते हो, मैं भी उसी को बचाने के लिए यहां किताबें पढ़ता हूं या ऑफिस में बैठा हुआ। तुम सिर्फ सरहद की सीमा की रक्षा कर सकते हो, पर सीमा रक्षा होने के बाद आपने एक देश को आजाद कर दिया, उसके बॉर्डर से बॉर्डर को आपने सेव कर दिया, पर रहने वाले लोगों के अंदर अगर कुछ नहीं, आपके अंदर कोई आर्ट नहीं, कोई क्राफ्ट नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कोई साइंस नहीं, किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं, तो कैसा देश है, कैसा समाज है? क्या अमेरिका दुनिया में इसीलिए सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेड है कि उसके पास ज्यादा जमीन है? क्या ब्रिटेन पूरे दुनिया पर राज किया इसीलिए कि उसके पास जमीन ज्यादा है? जमीन तो ज्यादा रूस के पास है, जमीन तो हमारे पास भी बहुत बड़ा है भारत के पास। समस्या है कि देश का मतलब होता है कि वो देश, उस देश में रहने वाले लोग, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसका खान पान, रहन सहन, सब कुछ मिलाकर के एक देश होता है। उस देश को बचाने के लिए, उस देश को आगे बढ़ाने के लिए हर आदमी जहां जहां जैसा कंट्रीब्यूशन करता है, वो आफ्टर उस देश के लिए ही करता है। देश सिर्फ बॉर्डर बचाने के लिए ही देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति आप पढ़ाई करके भी कर सकते हो, आप साइंस की लेबोरेटरी में काम करते हुए भी देशभक्ति कर सकते हो, आप चपरासी बन के भी देशभक्ति कर सकते हो, आप अपने परिवार को ठीक से पाल के भी कर सकते हो। तो देश एक पूरा, एक बहुत सारे चीजों का एक संकलन है। एक टीचर अगर अपने क्लास में ठीक से नहीं पढ़ाता है, वो अगर 8 घंटे की क्लास में 4 घंटे तक जिंदाबाद करता रहता है, तो क्या आप उसको कहोगे ये राष्ट्रभक्त है? वो ज्यादा बेईमान है, वो देश के लिए ज्यादा गद्दार है, क्योंकि वो ऐसे बच्चों को तैयार कर रहा है जो उसके कारण नालायक बनेंगे, जो उसके कारण अधपड़ बनेंगे, और वो एक ऐसे देश को निर्माता बनने जा रहा है जो अधपड़ देशों के होगा। एक साइंटिस्ट अगर अपने लैबोरेटरी के साथ ईमानदारी नहीं बरत रहा है, अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने एक्सपेरिमेंट के साथ ईमानदार नहीं है, वो अगर सरकारी पैसा खा करके गलत स्टेटमेंट देता है रिसर्च के बारे में, जैसे कि आजकल दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट करते हैं, खास करके एनवायरमेंट के बारे में, वार साइंस में, बहुत सारे साइंस में साइंटिस्ट भी बड़े हेराफेरी करते हैं, वो बड़े बड़े कंपनियों के पैसे से लेकर के, बड़े बड़े देश के पैसे से लेकर के, तो वो ऐसे साइंटिस्ट को आप कहेंगे ये देशभक्त है, जो अपने, जैसे आप देखते हैं दुनिया में पाकिस्तान का वो साइंटिस्ट, वो ईरान को भी बेच डाला जो जो एटॉमिक एनर्जी के जो जो बम बनाने की जो स्ट्रेटेजी है, जो उसके जो फ्रेमवर्क है। एक ऑफिस में काम करने वाला क्लर्क हो या ऑफिसर हो, एक छोटा सा काम करने वाला हो, वो अपने ऑफिस में ईमानदारी से 8 से 10 घंटा जितना भी उसका काम है ना करके, अगर वो बाहर घूम करके नेतागिरी करता फिरे कि मुझे देश बचाना है, क्या वो उसी को आप कहते हैं पेट्रियोटिज्म? ये बेईमानी है, ये समझने की बड़ी जरूरी है। झंडा लेकर घूमने वाला सिर्फ देशभक्त हो ही नहीं सकता, और जो चुपचाप है आप नहीं कह सकते कि वो गद्दार है। जो चुपचाप अपने काम को करता है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है उस देश को आगे बढ़ाने के लिए। दुनिया में किस देश का ज्यादा सम्मान है? जिस देश के लोग ज्यादा अचीवमेंट लाते हैं। क्यों अमेरिका में इंडियन सोसाइटी का बड़ा रिपुटेशन है, बड़ा अच्छा रिपुटेशन है? क्यों अमेरिकन लोग इंडियन लोगों को रेस्पेक्ट करते हैं, अरब में नहीं करते हैं? आपको पता है अरब में इंडियन लोगों को बड़े गंदे दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए नहीं कि कोई रिलीजियस डिफरेंसेस से नहीं, अरब में जिस तरह के इंडियंस जाते हैं वो ज्यादातर मजदूर लोग जाते हैं, ज्यादातर काम करने वाले लोग जाते हैं, इसीलिए वो इंडिया को उसी दृष्टि से देखते हैं, मजदूरों का देश, गरीबों का देश, अनपढ़ों का देश। पर अमेरिका में उसका उल्टा क्यों है? क्यों यहां अमेरिकन सोसाइटी में इंडियन लोगों का इतना सम्मान है? क्योंकि ज्यादातर इंडियन वो आते हैं जो यहां बहुत पढ़े लिखे हैं, जो बहुत कुछ जानते हैं, जिनको भारत में वो मौका नहीं मिला, जो कर सकते हैं, जो यहाँ करके दिखाते हैं, बड़े अच्छे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंटरप्राइजर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हर तरह के मामले में अच्छा काम करने वाले हैं। ये यहाँ माना जाता है, ये ओवर अचीव्ड कम्युनिटी माना जाता है। इसीलिए आपको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। आपको पता है यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में चाइना को ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों मिलता है इंडिया के बनिस्पत? क्योंकि चाइना के लोग के अंदर बहुत सेल्फ एस्टीम है। इंडियन लोग बहुत अचीव अच्छा करते हैं पर उनके सेल्फ एस्टीम बहुत घटा हुआ होता है। वो इंडियन परिचय देने में भी नफरत महसूस करते हैं, अपने आप को हिंदू कहने में भी उनको दर्द होता है, अपने कपड़े पहनने में उनको परेशानी है, उनके खान पान में उनको खुद से शिकायत है। ऐसा चाइनीज लोगों में नहीं दिखता है, ऐसा इजराइल ज्यूश लोगों में नहीं दिखता, इसीलिए ज्यूश वहां ज्यादा रिस्पेक्ट पाता है। वो 3000 साल से 2000 साल से इंडिया में आज भी वो ज्यूश है। हमें शिकायत है कि हमारी अगली पीढ़ी पता नहीं हिंदू रहेगी न रहेगी। ये क्या चीज है? ये माँ बाप के अंदर जो सेल्फ एस्टीम की कमी है वो बच्चों तक ट्रांसफर होता है। हम एक पीढ़ी को नहीं संभाल पाते और ज्यूस 2000 साल से यूरोप में ज्यूस हैं, इंडिया में ज्यूस हैं 2000 साल से, अमेरिका में भी 300 साल से ज्यूस हैं, आज भी वो ज्यूस हैं। ये जो हमारी कम्युनिटी में जो खुद के प्रति एक 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 इंफीरियरिटी भाव है, उसी के कारण हमें पॉलिटिकली रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता, पर चाइना को मिलता है। वो कहीं भी रहे, वो ज्यूस को मिलता है, वो जापानीज को मिलता है, वो कहीं भी रहे, कितने सालों से रहे, वो जैसा है वैसा है। आपको पता है भारत में 1500-2000 साल से पर्तुगीज हैं, फ्रेंच हैं, पर आज भी वो पर्तुगीजी हैं। 2000 साल से वो कम्युनिटी है। और बिल्कुल आप कहेंगे हम क्या करें, हम एक उल्टे कल्चर में आ गए, अब यहाँ का कल्चर, इंडिया का कल्चर ये हो गया, बच्चे बिगड़ गए तो हम क्या करें? पर क्या इंडिया का कल्चर, यूरोप का कल्चर डिफरेंट नहीं है? पर वो पर्तुगीज जो 1500 साल से इंडिया में है वो आज भी पर्तुगीज है, पर्तुगीजी में बोलता है, पर्तुगीज खाना खाता है, ठीक है, वो इंडिया के बहुत सारे कल्चर को अडॉप्ट कर रखा है, पर 1500 साल से उसके खानदान में आज भी पर्तुगीजी कल्चर है। वो फ्रेंच के कल्चर में, जो इंडिया में आप जाएंगे, पुद्दुचेरी जाइए, पांडिचेरी जाइए, केरला जाइए, वो फ्रेंच आज भी फ्रेंच कल्चर लेकर जीता है। ये क्या है? अपने अपने रिलीजन के प्रति, अपने कल्चर के प्रति, अपना जो आइडेंटिटी है, मैं किस देश से बिलोंग करता हूँ, उसके प्रति जो प्राउड फीलिंग है वो उनको मजबूर करता है कि मैं इसको 1500-2000 साल तक मैं ना छोड़ सकूं। ये इंडियन लोगों में बड़ी कमी है। वो एक ही पीढ़ी में बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, धैर्यशाही हो जाते हैं, रोते फिरते रहते हैं। एक छोटी सी कहानी कहकर के खत्म करेंगे क्योंकि आगे आपको झंडा फहराने जाना है। देशभक्ति का एक्चुअली मतलब क्या होता है और देशभक्ति से कैसे एक देश सचमुच महान बन सकता है? हमने देखा जापान एक छोटा सा देश है जहां साल में सैकड़ों बार वैसे ही भूकंप से, अर्थक्वेक से लेकर के ये लावा निकलते रहते हैं। ऊपर से वर्ल्ड वॉर में उन पर एटम बम गिराया, पूरा देश तहस नहस हो गया। और आपने आप देखते हैं आज की तारीख में, और आज तो थोड़े बाकी देश भी काफी आगे आ गए हैं, आज से 20-25 साल पहले आप देखते हैं, 10-15 साल पहले दुनिया में जितने तरह के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सब जापानी टेक्नोलॉजी है। वो आपकी गाड़ियां हो, आपके घर में टीवी हो, एसी हो, वो कूलर हो, जो कुछ हो सब जापानी मेड है। आज भी जापानी का जो जापानी जो इंडस्ट्रीज है वो अमेरिका जैसे डेवलप्ड देश में भी जापानी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा हाईएस्ट इसमें रहता है, पूरे यूरोप में छाया हुआ रहता है। और जापान एक धनी देश है, छोटा सा देश है, रोज उसमें भूकंप से लेकर पता नहीं क्या क्या होता रहता है, और जनसंख्या भारत से भी ज्यादा, वहां डेंसिटी, उनकी पॉपुलेशन की डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, उनकी मुसीबतें भी ज्यादा है, उसके बावजूद भी जापान पूरे दुनिया में, एशिया में होते हुए भी अपना एक अलग आइडेंटिटी बनाए रखा। क्यों? एक छोटी सी कहानी से आप समझ पाएंगे, उसी के साथ बात को विराम देंगे। हमने अखबार में एक एक, एक छोटी सी कटिंग पढ़ी थी, न्यूज कटिंग मैंने रखी है, तो एक इंडियन लड़का, वो इंजीनियरिंग, जैसे हम लोग बाहर आते हैं आप नौकरी करने, तो वैसे वो भी इंजीनियर था, तो वो जापान में उसकी नौकरी लगी कंपनी में, वो नौकरी करने गया था, तो उसने ये टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख लिखा था, आज से 8-10 साल पहले की लेख है। तो उसने लिखा कि जब वो जो जापान में नौकरी करता था तो उसके ऑफिस में किसी लड़की के साथ उसको प्यार हुआ और दोनों रिलेशनशिप में रहे काफी सालों रहे। एक दिन उसको अचानक मैसेज मिला कि उसकी माँ बीमार है या पापा बीमार है, जो भी है, तो उसको जल्दी आना है, अपने देश आना है। तो तो उसने फटाफट टिकट किया, एयर टिकट किया और अपने गर्लफ्रेंड को इन्फॉर्म किया कि मैं कल 10 बजे या 12 बजे मेरा प्लेन है, मैं जा रहा हूँ, प्लीज तुम एयरपोर्ट पर आ जाना मुझे सी अप करने। लड़की ने मैसेज भेजा कि मेरा वो ऑफिस टाइम है, मैं आ नहीं सकती हूँ, पर मुझे मैं तुम्हें यहीं से बेस्ट ऑफ लक करता हूँ, तुम चल। अब वो तो ठहरा इंडियन लड़का, बड़ा इमोशनल, ये कोई प्यार होता है? सी अप करने नहीं आओगी, ये कौन सा प्यार? तुम्हारा प्रेमिक मैं हूँ और तुम कहोगे कि मुझे काम ज्यादा है, मेरे से ज्यादा तेरा ऑफिस का काम है? हमारे यहाँ तो हिंदी गाने हम सुनते हैं, वो जो मूवी में हम सुना करते हैं कि तुम्हारे लिए मैं देश भी बेच डालूं, तो बस तो प्यार के चक्कर में तो हम देश बेचने को भी तैयार होते हैं। तो वो उस मेंटालिटी का लड़का था, तो उसने खूब सारे प्यार के दुहाइयां दी कि देखो प्यार ऐसा होता है, वो होता है, तो ऑफिस का नाम लेती है। तो लड़की ने बोला ठीक है मैं आऊंगी। तो आई अगले दिन उसको शिप करने एयरपोर्ट पर, और जब वो अंदर गया लड़का ये प्लेन पकड़ने, तो उसके हाथ में एक चिट्ठी दिया और वो जल्दीबाजी में पॉकेट में रखा उसको, और प्लेन में बैठ करके उसने उस चिट्ठी को पढ़ा। तो चिट्ठी में लिखा हुआ था, उस लड़की ने लिखा था, जिस चिट्ठी को उसने टाइम्स ऑफ इंडिया में छपवाया था उस लड़के ने, कि उसमें लिखा हुआ था कि मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम मुझे जितना प्यार करते हो इसमें कोई शक नहीं है, पर आज तुमने अपने प्यार के कारण मुझे अपने देश के साथ गद्दारी करने के लिए मजबूर किया। शब्द देखिए, सीधी सी बात है, वो ऑफिस में काम करती है, किसी ऑफिस में 2-3 घंटे के लिए वो चली गई, पर वो लिखती है कि तुमने मुझे आज मुझे अपने देश के साथ गद्दारी करने के लिए मजबूर किया, मैं अगर ऐसे तुम्हारे साथ प्यार करती रही तो मेरे से तुम बहुत कुछ कराओगे, तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ पर आज से तुम्हारा मेरा संबंध यही खत्म है। वो बेचारा बड़ा इंटेलेक्चुअल लड़का था, तो उसको ये चीज बुरा नहीं लगा, उसने उस चीज को अखबार में छापा अपने इस इंसिडेंट को ये बताने के लिए, क्योंकि जापान क्यों महान है, अब भारत क्यों महान नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे कमी क्या है, हमारी देशभक्ति सिर्फ जय हिंद तक रहता है, और हम ऑफिस में 10 घंटे के जगह 2 घंटे काम करें ना करें, हम टीचर पढ़ाएं ना पढ़ाएं, हम अपना काम ईमानदारी से माँ बाप होकर के बच्चों को ठीक से पाले ना पाले, बस भारत माता की जय कर देते हैं, सोचते हैं मैं देशभक्ति करता हूँ, और वहां ये घुट्टी पिलाई गई है। तो जहां भी है, तो जिस भी पोजीशन में है, जो भी काम करता है, उस काम के साथ अगर तुम गड़बड़ी करते हो, वो उसका रिजल्ट देश को आफ्टर ऑल मिलता है, इसीलिए, और ये फीलिंग के साथ वो पैदा होते हैं, इसी फीलिंग के साथ बढ़ते हैं, इसीलिए वो अपने ऑफिस में 2 घंटे छुट्टी लेकर अपने प्रेमिक के पास जाती है, तो उसको एक गिल्टी फीलिंग होती है अपने मन में कि मैं अपने देश के साथ बेईमानी कर रही हूँ, और इसीलिए जापान महान है, छोटा सा देश है, हजारों समस्याओं से जूझता है, पर एटम बम बनने के बाद बर्बाद हो चुका है, उसके बावजूद भी देश में छोटा सा देश महान है, पर हम नहीं बन पाते, क्योंकि हम देश में रहें या देश के बाहर रहें, वो जो ये जो इंडियनिज्म है, जो भारतीयता का बोध है, वो हमारे अंदर अभी तक जेन्युइन नहीं आ पाया है, हम ऊपरी तौर पर आया है। सज्जनों देवियों, जब हम अपने काम को ठीक से करें, अगर देश से बाहर भी रहते हैं, इस फीलिंग के साथ हम बाहर रहे कि मैं जैसा हूं मैं हूं, उस पर प्राउड फील करूं, मैं अपने बच्चों तक वो प्राइडनेस को ट्रांसफर करूं, तभी वो देशभक्ति, हजारों सालों तक आप चांद पर रहें या मंगल पर रहें, आप देश से बाहर किसी भी कोने में रहें, तो आप उस डीएनए से आप अलग नहीं हो सकते हो, उस कनेक्शन से, उस लिंक से आप छूट नहीं सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, कभी कभी हमें लगता होगा हम तो देश से बाहर आए, यहाँ के सिटीजन हो गए, तो हमें क्या इतना फर्क पड़ता है, पर आप नहीं जानते, किसी भी देश को बदलने में, सुधारने में, सिर्फ ज्यादातर जो लोगों ने काम किया, तो वही लोग हैं जो उस देश से बाहर रहे। हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में देखिए, जितने लीडरशिप थे वो वही थे जो बाहर रहते थे, साउथ अफ्रीका से लेकर ब्रिटेन तक, यहीं से जाकर के उन्होंने आंदोलन किया। आज भी भारत में जितने भी जागरण आ रहे हैं, जितने भी रिवोल्यूशन आ रहे हैं, वो वही लोग हैं जो बाहर रहते हैं, सिर्फ भारत नहीं, दुनिया की किसी भी देश में। ये नहीं है कि हम बाहर रह जाने से हमारे जो मदरलैंड है उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं रहा, वो छूटे ही नहीं सकता, आप चाह कर भी अपने आप को ये जो स्टाम्प आप हटा नहीं सकते कि मैं इंडियन नहीं हूं। आपके 15 पीढ़ी के बाद भी आपको लोग इंडियन के नाम पर बुलाएंगे, आप एक्सेप्ट करें ना करें, अमेरिकन आपको बोलेगा कि तुम इंडियन ओरिजिन हो, वो छोड़ नहीं रहा है। वो अफ्रीकन वाले जो 400 साल से यहाँ है, उनको आज भी वो अफ्रीकन बोलते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तुम कौन से खेती के मूली हो कि तुम्हें छोड़ देंगे। वो ब्रिटिश जो है वो आज भी ब्रिटिश अमेरिकन है, वो जर्मनी अमेरिकन है 400-500 साल से। तुम किसी खेती के मूल्य को कहते हो कि मैं तो अमेरिकन हो गया, मुझे कौन कुछ नहीं वाला। किसी का ओरिजिनिटी कभी खत्म नहीं हो सकती है। तुम भूल जाओ, दुनिया नहीं भूलती है। अच्छा है कि एक्सेप्ट करो और उसको रियलाइज करो और उसको डेवलप करो। धन्यवाद बहुत।